दूसरा इतिहास अध्याय 30, अध्याय 30 पद 1 से लेकर 5 तक। फिर हिजकिया ने सारे इसराइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रेम और मनशे, ये तो उत्तरी क्षेत्र के ऊंचे पर है, के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसा को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे, और ये बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी। तब उन्होंने ये ठहरा दिया कि बर्शेबा, ये दक्षिण क्षेत्र के रेगिस्तान के भाग से लेकर दान के सारे इसराइलियों में ये प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ। ये करीब हर्मोन पर्वत की तराई से लेकर हूला घाटी के उत्तरी भाग तक गलील के समुद्र से ऊपर तक प्रचार हुआ। अध्याय 30 पद 6। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार ना मनाया था जैसा कि लिखा है, इसलिए हर कार्य राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इसराइल और यहूदा में घूमे और ये कहते गए कि हे इसराइलियों, इब्राहिम, इसाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वो अशूर के राजाओं के हाथ से बचे तुम लोगों की ओर फिरे। ध्यान दे, वे उन्हें संबोधित कर रहे थे जो आराम के राजा के हाथों से बच गए थे। ये उत्तरी राज्य के कुल थे, मनशे, एप्रेम, शिमोन आदि के लोग थे। अध्याय 30 पद 7 से लेकर 9 तक। और अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसे कि तुम स्वयं देख रहे हो। अब अपने पुरखाओं की नाई हट न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और लड़के वालों को बंधुआ बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वो अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। हिजकिया ने पत्र में लिखा, आप लोग जानते हैं कि आरामियों ने आकर उत्तरी राज्य ले लिया था और लोगों को बंधुआई में ले गए, परंतु कुछ लोग यहाँ बचे रह गए हैं। उसने उन्हें लिखकर कहा, देखो यहाँ आओ, हम परमेश्वर की ओर फिरे। यदि हम परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर कार्य करेगा और तुम्हारे परिवार जो बंधुआई के चले गए हैं वापस लौट पाएंगे। हम अपने हृदयों से वास्तव में परमेश्वर की ओर फिरे, आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। ये लोगों को एकजुट करने और उत्तरी राज्य से उन्हें परमेश्वर की आराधना करने को लौटाने का प्रयत्न था, जो हिजकिया की ओर से एक सुंदर प्रयत्न था। फिर उसका वक्तव्य, यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चय ही परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयावंत है। एक गलत विचार यह है कि बाइबल में दो परमेश्वरों को दर्शाया गया है, पुराने नियम का परमेश्वर और एक नए नियम का परमेश्वर। पुराने नियम का परमेश्वर कोप करने वाला और बदला लेने वाला है, और नए नियम का परमेश्वर प्रेम करने वाला है। ऐसा नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर को हम दया करने वाला पाते हैं, और हिजकिया ने कहा यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। पुराने नियम में उसको अनुग्रहकारी दयावंत और तरस खाने वाला परमेश्वर कहा गया है। जैसा भी है, उनके लिए जो उसके अनुग्रह और दया का इनकार करते हैं, वे स्वयं अपने जीवन में विनाश लाते हैं। परमेश्वर दयावंत है, परंतु वो सदा ढाल बना ना रहेगा। दुष्टता का फल संकट में डालता है, और तब लोग परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। दंड सदा आपके चारों ओर रहता है, पर परमेश्वर का हाथ सदा दंड से आपको बचाता है। नए नियम में परमेश्वर को प्रेमी परमेश्वर दर्शाया गया है। हां, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परंतु वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 6:18 पढ़ें, तो परमेश्वर के न्याय के बारे में जानेंगे। वो पृथ्वी पर उसके विद्रोह का फल आने देता है और विरोधियों पर अपना कोप डालता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं, बाइबल में दो परमेश्वर प्रकट होते हैं, पुराने नियम में एक प्रकोप करने वाला परमेश्वर और दूसरा प्रेमी परमेश्वर जो नए नियम में है, वे वास्तव में बाइबल नहीं जानते हैं। उन्होंने ध्यानपूर्वक बाइबल का अध्ययन नहीं किया है। ये कहना तो हास्यास्पद है कि बाइबल में दो परमेश्वर प्रकट होते हैं। परमेश्वर एक ही है, वो प्रेमी, दयावंत और तरस खाने वाला है, जो पुराने नियम और नए नियम दोनों में प्रकट होता है, परंतु वही परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। इसलिए हिजकिय्याह प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर की ओर फिरो। उत्तरी राज्य के लोगों ने पत्र लाने वालों का मजाक किया, उन्हें नीचे दिखाया और उस संदेश को मान्यता नहीं दी। फिर भी कुछ लोग फसा का पर्व मनाने आए और यरूशलेम में बड़ी भीड़ जमा हो गई। ये एक यादगार का क्षण होने वाला था। यहां पर परमेश्वर की उपासना बहुत समय से त्याग दी गई थी और अब बड़ा पवित्र दिन, फसा का दिन मनाया गया। वे लोग जमा होकर यरूशलेम में फसा मना रहे थे, जिसके लिए पवित्रकरण की विधि से गुजरना आवश्यक था। उन्हें अपने सिर को मुड़वाकर हर रोज मंदिर में आकर स्नान की विधि से स्वयं को पवित्र करना होता था, विशेषकर मूर्ति पूजकों की अशुद्धता से पवित्र होने के लिए था। यह विशेषकर उनके लिए उचित था जो अन्य जातियों के देश में से यरूशलेम में पवित्र दिन मनाने में आते थे। ये आवश्यक था कि अन्य जातियों की सब अशुद्धता से स्वयं को साफ किया जाए, इसलिए उन्हें इस पवित्रीकरण की पद्धति से गुजरना पड़ता था। आपको याद होगा कि जब पौलुस कुछ समय के लिए यरूशलेम में था और फसा का पर्व निकट था, उसने वही फसा का पर्व मनाना चाहा। इसलिए उसने पवित्रकरण की विधि आरंभ की और दो जवान मनुष्यों को भी शोधन विधि में सम्मिलित किया। इन दिनों क्योंकि वे मजदूरी नहीं करते थे, इसलिए पैसों का अभाव होने के कारण पौलुस को उन्हें आर्थिक सहयोग देना पड़ा। याकूब ने कहा, पौलुस, मैंने सुना है कि तुम अन्य जातियों के शहर में यहूदियों को भड़का रहे हो, जबकि तुम स्वयं अच्छे यहूदी नहीं हो और अन्य जातियों की रीतियों के अनुरूप चलते हो। आज बहुत सी कलीसियाओं में गड़बड़ी है। वे समझते तो है कि तुम में बदलाव आ गया है और तुम अन्य जातियों के मध्य में हो, तो तुम क्यों उन्हें एक अच्छे यहूदी की तरह सुव्यवस्थित नहीं करते? आगे बढ़कर विधियों को पूरा करो और इन दो मनुष्यों का प्रयोजक बनकर सबको दिखा दो कि तुम अब भी एक अच्छे यहूदी हो। इसलिए पौलुस ने शांति बनाए रखने के लिए मंदिर में जाकर शोधन की विधियां पूरी की। वहां एशिया के कुछ यहूदियों ने पौलुस को शोधन की विधि पूरा करते हुए देखा और कहा, यही वो मनुष्य है जिसने पूरे एशिया में समस्या पैदा की है। एक बड़े उपद्रव के बाद पौलुस रोमियो के पहरेदारों के द्वारा बचाया गया और किले में ले जाया गया। जब वो भीतर जा रहा था, उसने पहरेदार से कहा, मुझे इन लोगों से एक मिनट बात करने दो। और पहरेदार ने कहा, ठीक है। पौलुस ने अपने हाथ हिलाकर उपदेश देना आरंभ किया। भीड़ उसके पीछे चिल्ला रही थी, इसे मार डालो, इसे छुटकारा पाओ। उसने कहा, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात करूं? और वो लोग चुप हो गए। तब पौलुस ने कहना आरंभ किया, देखो मैं जानता हूं तुम्हें कैसे लग रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं भी तुम्हारे जैसे था। फरीसी इसकी पुष्टि करेंगे, मैं उनमें से एक हूं। वास्तव में मैं चर्च को सताता था, जिसे मैं सोचता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, जैसे तुम आज सोचते हो। परंतु जब मैं दमिश्क को जा रहा था, मुझे यीशु मसीह ने पकड़ा और उसने कहा, तू मुझे क्यों सताते हो? और मैंने कहा, प्रभु तू कौन है कि मैं तेरी सेवा करूं? और उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और पौलुस ने कहा कि उसने मुझसे बातें की और कहा कि मैं तुम्हें अन्य जातियों में भेजूंगा। जब उसने शब्द अन्य जाति बोला, स्थिति बिगड़ गई। लोगों ने अपने कपड़े फाड़ने आरंभ कर दिए, धूल हवा में उड़ानी शुरू कर दी और चिल्लाने लगे। वो लोगों से इब्रानी में बात कर रहा था, इसलिए रोमन अधिकारी समझ नहीं रहा था पौलुस ने क्या कहा। वो नहीं जान पाया क्योंकि वो इब्रानी भाषा नहीं जानता था। और भीड़ ने उस पर चढ़ना आरंभ किया। तब उसने कहा, उसको अंदर ले आओ। और वे पौलुस को किले के अंदर ले गए। उसने कहा, पता करो इसने लोगों से क्या कहा है, इसे कोड़े मारो और इसे पूछो। कोड़े मारना रोमियों का तीसरी श्रेणी का दंड था। वे चमड़े की रस्सी हंटर से मारते थे, कांच तोड़कर उस पर लिटाते थे और तब तक मारते थे जब तक अपराधी अपना अपराध ना मान ले। इसलिए उसने कहा, कोड़े मारकर पूछताछ करो, पता करो इसने क्या कहा है, इसने बाहर हलचल मचा दी है। लोग पहुंच गए थे, परंतु यहां वे पिछड़ गए और समारोह का समय आ गया था। उनके पास शोधन विधि पूरा करने का समय नहीं रह गया था। इसलिए हिजकिया ने कहा, परमेश्वर इन विचारों पर दया कर, ये दूर से तेरी आराधना करने आए हैं, इन्हें बिना विधियों का पूरा किए ऐसा करने दे और उन्हें ग्रहण कर प्रभु। परमेश्वर ने कहा, मैं उन्हें बिना विधियां पूरे किए भी ग्रहण करूंगा। वे फसा का पर्व मनाएं। ये एक और मौका था लोगों के लिए कि वे परमेश्वर की ओर फिरे। अध्याय 30 पद 18। क्योंकि हिजकिया ने उनके लिए ये प्रार्थना की थी कि यहोवा जो भला है वो उन सबों के पाप ढाप दे। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है। अध्याय 30 पद 19 से लेकर 21 तक। जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की वेदी के अनुसार शुद्ध ना भी हो, और यहोवा ने हिजकिया की ये प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। और जो इसराइली यरूशलेम में उपस्थित थे, वे 7 दिन तक अकमीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे। और प्रतिदिन लेविय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। इतना बड़ा समारोह उन्होंने अगले 7 दिन तक मनाने का निर्णय किया और वे 7 दिन तक परमेश्वर की आराधना करते रहे। अध्याय 30 पद 22। और जितने लेविय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिया ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे और इस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। उन्होंने 7 दिन और पर्व मनाने का निश्चय किया। अध्याय 30:26, इस प्रकार यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि दाऊद के पुत्र इसराइल के राजा सुलेमान के दिनों से ऐसी बात यरूशलेम में न हुई थी। वर्षों बाद ऐसा हुआ था। अध्याय 30:27, अंत में लेवीय याजकों ने खड़े होकर प्रजा को आशीर्वाद दिया और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची।